देवी माँ सहचरी प्राण के शेष भाग को सुनिए। निराला ने भी इस नवीन प्राणानुभूति का चित्रण किया है। प्रथम दर्शन की अनुभूति को ही सबसे पहले लें। सायंकाल युद्ध से लौटे हुए राम के निराशा क्षण मन में सहसा पृथ्वी तनया की कुमारी का छवि विद्युत के समान कौंध उठती है, और फिर याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय। इसी प्रसंग का वर्णन तुलसीदास ने भी किया है, परंतु निराला के इस चित्रण में जो मानसिक उथल पुथल तथा प्रेम के जिस विश्वव्यापी प्रभाव की अभिव्यक्ति हुई है, वह तुलसीदास की सीधी साधी अभिव्यंजना में कहाँ। तुलसी की सीता को जब सखियाँ लता ओठ से श्यामल गौर किशोर को लखाती हैं, तो वे एकटक रघुपति की शोभा देखती ही रह जाती हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद लोचन मग रामही उर आनी दिन्हे पलक कपाट शयानी। लेकिन निराला के यहाँ तो नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण हो जाता है। नैनों का यह गोपन संभाषण और फिर पलकों का उत्थान पतन, प्रेम की इस दशा में निराला के राम को संपूर्ण प्रकृति प्रेमोन्मत्त दिखाई पड़ती है। किसलय कांप रहे हैं, फूलों से पराग झर रहे हैं, खग नए जीवन के परिचय का गीत गा रहे हैं, और तरुमलय पवन से वलयित हो उठे हैं। लगता है कि स्वर्गीय ज्योति का प्रपात झर रहा है। प्रणयानुभूति की यह भावाकुल अलौकिकता तथा व्यापकता तुलसी के उस वर्णन में कहाँ। वहाँ तो सीता को देश दुनिया की खबर ही नहीं। एक सखी के व्यंग्य वचन पर जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो तुरंत भयं विलंब मातु भय मानी वे घर के लिए चल पड़ती हैं। और इन सबसे बढ़कर जो निराला की जानकी के कमनीय नयनों के प्रथम कंपन की तुरियावस्था है, वह तुलसी के दिन्हे पलक कपाट सयानी की सूक्ष्म व्याख्या है, महाकवि की उस सीधी अभिव्यक्ति की गहनता का उद्घाटन है। तुलसीदास और निराला के इन चित्रों का अंतर दो युगों का अंतर है। पिछले 300 वर्षों में मानव के मन का जो विकास हो गया है, उसकी छाप निराला की कविता में स्पष्ट है। आधुनिक प्राणानुभूति की यह बारीकियां हैं जो पुरानी कविता से आधुनिक कविता को अलग करके इसकी विशिष्टता प्रकट करती हैं। प्रणय की प्रथम अनुभूति का चित्रण निराला ने अन्य कविताओं में भी किया है, पर अनामिका की रेखा कविता इनमें अग्रणी है। इसमें उर रेखा का चित्रण है जो यौवन के तीर पर सौंदर्य स्रोत के पहली बार आने पर खींची थी। किशोरावस्था बीतते बीतते और युवावस्था चढ़ते समय मन में जितने प्रकार के भाव उठते हैं, उनका सूक्ष्म अति सूक्ष्म चित्रण यहाँ हुआ है। उस समय प्रीत की धारा संस्कृति की वाहिनी की तरह आती हुई मालूम होती है। पता नहीं चलता कि यह विशाल वाहिनी कहाँ किस दूर देश से चली आ रही है। एकदम अज्ञात और नीरव, उसके चरण चिन्ह भी नहीं दिखते। युवा हृदय अनायास ही इस वाहिनी के वेग में आ जाता है और देखते देखते अपनी सीमा भूलकर अकुल का साथी हो जाता है। मन में एक विलक्षण अपनाव उमड़ पड़ता है, जिसमें प्रेम भाव बिना भाषा का, तान तरल कंपन वह बिना शब्द अर्थ की। परिचय बिना भी यदि कोई कुछ कहता तो उसे हृदय अपना लेता है। प्रकृति में भी अपनी ही भावना की चिर पोषित छायाएं दिखाई पड़ती हैं। जीवन यौवन के इस प्रथम उत्थान में चारों ओर जीवन ही जीवन मिलता मालूम होता है। प्रकृति ऐसी मालूम होती है जैसे भी स्मृति में कोई स्मृति खुल आई हो। मन की वह स्थिति है जब हृदय के मंच पर सौंदर्य की कोई प्रतिमा नहीं आई है। उस विपुल अज्ञान में भी युवक के प्राण निरुदुष्य प्राणों को खोजते रहते हैं। अभी हृदय ने किसी आगंतुक के लिए स्वागत की वंदना ही सीखी है। अभी तक उसे ऐसी कोई एक भी मूर्ति नहीं मिली जिसके अधरों से विहुलता, कंठ में वेदना, हृदय में मृदुता, हाथों में निपुणता, चरणों में शिथिलता तथा उत्सुकता, वेदना भीति, नैनों की नैनों से मौन प्रार्थना, सिंचन सुहाग प्रेम आदि सब कुछ एकत्र ही मिल जाए। फिर भी अनायास ही ऐन्द्रिय बोध जाग रहा है, सब कुछ चेतन प्रतीत होता है। स्पर्श में रोमांच, अनुभव रूप में परिचय, गंध में सुख, रस में मंजन का आनंद और शब्दों में अलंकार, ये सभी अनुभूतियाँ विकसित हो गई हैं। रेखा में यदि पुरुष के युवा हृदय की पहली अनुभूति अभिव्यक्त हुई है तो प्रेयसी में नारी हृदय की। युवती अनुभव करती है कि जिस समय तारुण्य की वह प्रथम तरंग अंग अंग को घेरकर लहर उठती है, वह अपने तरु तन को घेरने वाली ज्योतिर्मय लता के समान प्रतीत होने लगती है। वह चक्राकार कलरव तरंगों के मध्य उठी हुई उर्वशी सी मालूम होती है। ऐसे ही समय उसे कृतविद्य प्रिय का साक्षात्कार होता है। यह मिलना ऐसे ही है जैसे रस सृष्टि को मूक सूच दृष्टि मिली हो, फलस्वरूप समष्टि में फैला मन खींचकर अस्तब्ध हो गया और दूर थी खींचकर समीप जो मैं हुई, अपनी ही दृष्टि में जो था समीप विश्व दूर दूरतर दिखा। दो जीवों की छवियां मिली और नीलिमा शून्य से जैसे बध कर रह गई है, वैसे ही प्रिया प्रिय से बध गई। आंखों में न जाने कैसा निरंजन अंजन लग गया कि प्रिय से ही बधी हुई वह पृथ्वी को देखने लगी। उधर प्रिय ने जिस दृष्टि से उसे देखा उसमें ऐसी अपूर्व पवित्रता का अनुभव हुआ जैसे सजल शिशिर धौत पुष्प ज्यों प्रात में देखता है एकटक किरण कुमारी को। अपने प्रतियुवती को यह स्वानुभूति तथा प्रिय के दृष्टिपात में पवित्रता की अनुभूति, ये दोनों ही बातें अभूतपूर्व हैं। इस प्रकार की स्वानुभूति आधुनिक युग में ही संभव हो सकती थी। स्त्री पुरुष के प्रणय संबंध का एक दूसरा ही रूप पंत के यहाँ दिखाई पड़ता है। इसमें न तो प्रसाद किसी मधुचर्या है और न निराला का सा उद्यम आवेग। पंत के प्रणय चित्रण की विशेषता उसकी शैशव सरलता में है। इसमें न तो मधु किसी प्रगाढ़ मिठास है न ज्वार का उफान। इसमें छोटे से पहाड़ी झरने की सी तरलता है। उच्छ्वास आंसू और ग्रंथ के सरल बालिका को जिस भोलेपन के साथ पंत ने स्मरण किया है, उसके सख्य संबंध को जिस सहजता से प्रकट किया है और उसके बीचों में बच्चे की भांति जिस तरह सारा हृदय खोल कर रख दिया है, वह बेजोड़ है। इस सख्य भाव से पुराने सखी संप्रदाय की प्रणय भावना की कोई तुलना नहीं। पंत के उच्छ्वास में किसी परिणित विरही का ताप नहीं, बल्कि अनुभवहीन युवक के प्रथम विरह व्यथा का उद्गार है। यह उच्छ्वास बाल बादल की तरह अभी अभी उठा है, साथ ही वह सरल और स्फुट भी है। अभी उसे अपनी व्यथा का पूरा पूरा बोध भी नहीं, इसलिए उसमें युवा सुलभ प्रगल्भा नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर कैसोर संकोच है। यही वजह है कि यह प्रणय अस्फुट रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रेम की सरलता पर कभी इतना मुग्ध है कि उसके अनुसार शैशव ही है एक स्नेह की वस्तु सरल कमनीय। यह सारा प्रेम व्यापार आदि से अंत तक लड़कपन का खिलवाड़ ही बना रहा। प्रेमी को उसकी प्रिया ने जो ठेस पहुंचाई, वह भी एक तरह के लड़कपन वश ही है। बालकों का साग मारा हाथ कर दिए विकल हृदय के तार, इसलिए वह प्रेमी भी बालकों की ही तरह जोर जोर रोता है। बालकों सा ही रो तो मैं हाय याद कर रोता हूँ अनजान, और बालकों से इस रुदन में भी सहज ही प्रेम की ऐसी ऐसी सूक्ष्म अनुभूतियाँ अभिव्यक्त हो उठी हैं जो बड़े बड़े प्रौढ़ काव्यों में भी दुर्लभ हैं। जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं तब तुम्हें निदान, पूर्व सुधि सहसा जब सुकुमारी सरल सुख सी सुख कर सुर में, तुम्हारी भोली बातें कभी दोहराती हैं उर्मे। इन पंक्तियों में जो अतीत की बातों को याद कर मन ही मन दोहराने की विमूढ़ता है, और अगन से मेरे पुलकित प्राण सहस्त्रों सहज स्वरों से कूक तुम्हारा करते हैं आह्वान, में जो विक्षिप्त हृदय की अस्थिरता व्यक्त हुई है वह कम कविताओं में मिलेगी। पंत ने अत्यंत भोलेपन के साथ प्रणय की जो गुण गहन अनुभूतियाँ शब्दों में उतार दी है, उनकी विशेषता इसी बात में है कि अनुभव में वे सहजगम्य हैं, लेकिन अभिव्यक्त के प्रयास में वे कितनी दुर्गम हैं। इसे कोई रचयिता ही समझ सकता है। छायावादी प्रेम भावना की एक विशेषता उसका भावावेग है। मध्ययुगीन कवि प्रेम की व्यंजना में बहुत कुछ मर्यादित है और मितव्ययी थे। निसंदेह वे कभी कभी आंसुओं की गंगा जमुना बहा देते थे, लेकिन उन आंसुओं के बावजूद मध्ययुग के नायक अथवा नायिका का हृदय बहुत कम खुलता था। मध्ययुग का नायक खूब लंबी लंबी आहें भी भरता था, शिकवे भी करता था, छाती भी पीटता था और सिर भी धुनता था, किंतु इतना सारा व्यायाम करने पर भी अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने के प्रति उदासीन था। इसके विपरीत छायावादी कवि की प्रणयानुभूति अनुभावों की दृष्टि से न कुछ होते हुए भी भावों की दृष्टि से समृद्ध थी। छायावादी कवि शारीरिक चेष्टाएं तो कम करता था, परंतु अपना हृदय खोलकर रख देने में कसर नहीं रहने देता था, और इसे मानव सभ्यता के विकास का ही परिणाम समझना चाहिए। मजनू तो तब भी होते थे, लेकिन मजनू की तरह अपने जुनून को जाहिर जहान करते नहीं फिरते थे। छायावाद की इस नवीन प्रणय भावना ने प्रेम के आलंबन सौंदर्य का मानदंड ही बदल दिया। जिस प्रणय संबंध में भाव की प्रधानता हो, उसमें स्थूल अंग यष्टि को महत्व मिलना असंभव है। भावावेग में मनुष्य साक्षात रूप को भी अपनी कल्पना से रंग लेता है और प्रत्यक्ष रूप से भी किसी परोक्ष सौंदर्य के दर्शन करता है। छायावादी कवि ने नारी की पुनः सृष्टि की। उसने विधाता की सृष्टि को अपनी कल्पना के योग से नवीन रूप दे डाला। इस तरह छायावादी कवि की नारी विधाता की सृष्टि से कहीं अधिक कवि सृष्टि हैं। इसलिए छायावादी नारी आधी मानवी है और आधी कल्पना। इस बात को रविन्द्रनाथ ने चैताल की मानसी कविता में बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया है। शुद्ध विधातार सृष्टि न तुम्ही नारी, पुरुष गछेड़े तोरे सौंदर्य संचारी, आपन अंतर हते वशी कविगन, सुनार उपमा सूत्रे बुनिछे वसन। नारी सौंदर्य के चित्रण में उपमाओं की राशि तो पहले के कवियों ने भी लुटाई है, लेकिन छायावादी कवियों ने अद्भुत कल्पना शक्ति के द्वारा नारी का जो भव्य रूप खड़ा किया है, उसके सामने पुराने कवियों की रूढ़ उपमाओं से अलंकृत नारी तुच्छ है। प्रसाद की श्रद्धा, पंत की अप्सरा और निराला की रत्नावली के सामने जैसे कि पद्मावती, सूर की राधा, तुलसी की सीता और रीतिवादी कवियों की समस्त नायिकाएं फीकी पड़ जाएंगी। मनु की आँखों के सामने श्रद्धा अभिराम इंद्रजाल प्रतीत हुई। उसका कांत वपु गांधार देश के नील और मसृण रोम वाले मेषों के चर्म से ढका हुआ था। श्रद्धा के नील परिधान के बीच जो अधखुला अंग खुल रहा था, उसे देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे मेघों के वन में बिजली का फूल खिला हो। उसके मुख की कांति को देखकर ऐसा लगता था कि इंद्रनील के लघु श्रृंग को फोड़कर ज्वालामुखी धधक रहा है, और श्रद्धा की मोहिनी मुस्कान तो अद्भुत थी। वह मुस्कान क्या थी? मानो रक्त किश्ले पर अरुण की एक अलसाई हुई किंतु अम्लान किरण पड़ी हो, और संपूर्ण अंग यष्टि जैसे कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा होले मधुका आधार। जो अंग यष्टि हवा में हिलते हुए पराग के परमाणुओं के पुंज की तरह प्रतीत हो, उसकी सूक्ष्मता सुकुमारता और सुरभिमयता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पंत की अप्सरा तो निखिल कल्पनामयी ही है। उषा उसकी पद लालिमा है, शशि स्मित है, उडुकंपन उर स्पंदन है, चपल वीचियां पद संचार हैं, विकच दल ही हृदय के भाव है, और इस तरह वह अपने आप जगत में प्रथम सौंदर्य पद्म से विकसित हुई है। इसका वर्णन करते अंत में कवि कहता है कि अप्सरा कोई एक नारी मूर्ति नहीं है, बल्कि नारी सौंदर्य संबंधी समस्त संपदा का पूंजीभूत रूप है, जो प्रत्येक युग में नवीन रूप रचकर आया करती है, जिसके निर्माण में संपूर्ण मानव जाति की पूरी प्रतिभा लग गई है। निखिल विश्व ने निज गौरव महिमा सुखमा करदान। निज अपलक उर के सपनों सा प्रतिमा कर निर्माण, पल पल का विस्मय दिश दिश की प्रतिभा कर परिधान, तुम्हें कल्पना औ रहस्य में छीण दिया अनजान। पूर्ववर्ती कवि इस प्रकार के शाश्वत युगव्यापी विश्वव्यापी तथा कल्पनामय नारी सौंदर्य की सृष्टि करने में असमर्थ थे। नारी सौंदर्य की स्थूल शारीरिकता तक ही सीमित रहने के कारण वे भीतर भीतर नारी रूप की नश्वरता के प्रति इतने अधिक सतर्क थे कि उनके लिए किसी शाश्वत सार्वभौम नारी रूप की कल्पना असंभव थी। सौंदर्य की अनश्वरता का विश्वासी ही अप्सरा की कल्पना कर सकता है। वस्तुतः आधुनिक नारी ने अपनी शक्ति का ऐसा परिचय दिया कि पुरुष के लिए वह रहस्यमय शक्ति प्रतीत होने लगी। पुरुष उसकी शक्ति से इतना अभिव्यक्त हो उठा कि उसके बाह्य रूप की सीमा को भूलकर उसमें किसी अतींद्रिय सौंदर्य का अनुभव करने लगा। आधुनिक नारी ने पुरुष की संस्कारबद्ध वासना को ऐसा धक्का दिया कि उसकी आँखों में बसी हुई प्राचीन नारी प्रतिमा चूर चूर हो गई और उसके स्थान पर एक दिव्य रमणी मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई। निराला के तुलसीदास का कामातुर रूप देखकर रत्नावली में ऐसा ही आधुनिक नारी जाग उठी। जागी जोगनी अरूप लग्न, वह खड़ी शीर्ण प्रिय भाव मग्न निरूपमिता। और अपने इस विराट रूप में जब रत्नावली ने तुलसीदास को धिक्कारा तो कवि की आंखों में नारी का और ही रूप सजीव हो उठा। देखा शारदा नील वसना, है सम्मुख स्वयं सृष्टि रसना, जीवन समीर सुचि नी वसना वरदात्री। अस्पष्ट ही यह अनुभूति आधुनिक तुलसीदास की है, प्राचीन की नहीं। नारी को स्वयं शारदा के रूप में देखना मनुष्य युगीन कवि के लिए असंभव था। अब तक कवि ने नारी की जिस वसना मूर्ति की धारणा बना रखी थी, वह नारी के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं पुरुष के लिए बंधन थी। परंतु नारी के उन्मुक्त विराट रूप के प्रतिष्ठित होते ही नारी के साथ साथ पुरुष भी मुक्त हो गया और इस तरह दोनों की मुक्ति से जीवन का नवीन संगीत फूट पड़ा। मुक्त होते ही नारी पुरुष के हृदय की मुक्त रागिनी बनकर बह निकली। जिस कलिका में कवि रहा बंद, वह आज उसी में खुली मंद, भारती रूप में सुरभि छंद निष्प्रश्रय। सौंदर्य संबंधी धारणा के बदलते ही छायावादी कवि ने नारी के स्थूल सौंदर्य की अपेक्षा उसके भाव सौंदर्य की ओर ध्यान दिया। रीतिवादी कवि को भावें कमान मालूम होती थी, आंखें तीर और हंसी जहर, लेकिन छायावादी कवि की दृष्टि में सरल भावों में था आकाश, हास में सरसों का संसार, तुम्हारी आंखों में करवाश, प्रेम ने पाया था आकार। इतना ही नहीं, छायावादी कवि के अनुसार नारी के कपोलों में उर के मृदु भाव हैं, सरल संकेतों में संकोच हैं, उसके उर में उषा का आवास है तथा चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस। स्वाभाविक है कि ऐसा सौंदर्य केवल कामोत्तेजना ही पैदा नहीं कर सकता। इस सौंदर्य के संपर्क में जो लहिए संग सुजन हूँ धड़क नरक हूँ कीन जैसी बात कह सकने का साहस नहीं हो सकता। बात कहना तो दूर, ऐसा कुत्सित विचार भी मन में नहीं उठ सकता। इसलिए पंत कहते हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। जिस कवि को नारी के संग में पावन गंगा स्नान की सी अनुभूति है, उसका प्रेम यदि गंगा जल की धार की तरह पावन हो तो क्या आश्चर्य। लेकिन खेद है कि बूढ़ी मटमैली आँखों को वह मदिरा मालूम हुआ। छायावाद में सौंदर्य का चित्रण इतना आदर्शवादी हुआ, प्रेम की अभिव्यक्ति भी उतने ही आदर्शवादी धरातल पर हुई। दोनों की ही भूमिका अत्यंत उदात्त है। द्विवेदी युग की शुद्धवादिता भी इस ऊंचाई को नहीं छू सकती। उस उदात्त वृत्ति ने ही छायावादी कवि को ऐसी सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि दी कि उसने नारी सौंदर्य के चटकीले रंगों की जगह सूक्ष्म रेखाओं और वर्ण छायाओं को भी उरेहने में सफलता प्राप्त की। इसी उदात्त वृत्ति के कारण छायावादी कवि को प्रेम की बारीक से बारीक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की शक्ति मिल गई, साथ ही वह प्रेम का ऊंचा आदर्श भी प्रतिष्ठित कर सका। प्रेम की इस उदात्त वृत्ति ने आधुनिक कवि को शाश्वत शक्ति दी कि उसने मार्ग में विघ्न स्वरूप आने वाले धन और जाति संबंधी भेदभाव को भी तोड़ने का प्रयत्न किया। प्रसाद के प्रेम पथिक की पुतली अथवा चमेली अनचाहे पति की कृत दासी होकर किसी तरह जीवन व्यतीत करती रही, किंतु पति के मर जाने पर उसने तमाम बंधनों को तोड़कर प्रेम की पर्णकुटी बसा ली और वहीं उसे पूर्व प्रेमी का सहचर्य प्राप्त हुआ। जिस समय प्रसाद ने प्रेम पथिक 1913 में लिखा, उस समय यह संभव नहीं था कि कोई नारी अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट होकर विवाह बंधन तोड़ने की कल्पना कर सके। फिर भी इस रचना में स्वच्छंद प्रेम की जो अभिव्यक्ति हुई है वह आधुनिक प्रेम भावना की पहली झांकी है। अपने बाल सखा को पति के रूप में प्राप्त करने की ललक चमेली के मन में कितनी थी वह उसके इन शब्दों से मालूम ही होता है। पुतली ब्याही जावेगी जिससे वह परिचित कभी नहीं, यही ध्यान था उठता मन में, हाय प्राण प्रिय क्या होगा। किंतु कौन सुनता उस सहनाई में रीततंत्री झनकार, जो नौबत खाने में बजती थी अपनी गहरी धुन में, रूखा शीशा जो टूटे तो सब कोई सुन पाता है, कुचला जाना हृदय कुसुम का किसे सुनाई पड़ता है। स्वच्छंद प्रेम के लिए आधुनिक स्त्री पुरुष तड़पते ही रहे, मगर पुराने रूढ़ियों की चट्टानों ने जुम्बिश न ली। जो व्यथा प्रेम पथिक की चमेली को हुई, वही ग्रंथ के युवकों को भी हुई। जिस लड़की के साथ उसका सहचर्य जन्य प्रेम विकसित हुआ, उसके साथ उसका विवाह न होकर किसी और के साथ हो गया। यह ग्रंथि बंधन तो अन्यत्र हुआ, किंतु युवक हृदय में एक ग्रंथि पड़ गई जो समय समय पर खटकती रही। ग्रंथि में वृद्ध अनुभवों की सिकोड़ और ज्ञान जिरंभा को जो खरी खोटी सुनाई गई है, उससे रूढ़ियों के प्रति आधुनिक युवक हृदय का आक्रोश पूर्णतः प्रकट होता है। दूसरी ओर ग्रंथि में टूटे हुए हृदय का जो रुदन व्यक्त हुआ, उससे स्वच्छंद प्रेम की मार्मिकता का पता चलता है। प्रेम की यह उदात्त प्रवृत्ति काव्य में दुर्लभ है। चीर विद्रोही निराला ने अपनी रचनाओं में प्रेम के मार्ग में बाधक जाति भेद को तोड़ डाला है। क्या हुआ जो यह दीवार वास्तविक जीवन में नहीं ढहती। कवि के पास कल्पना का भी तो एक अपना लोक है, वहां वह चाहे जो कर सकता है। निराला की जो प्रेयसी एक बार कुलमान ग्रंथि में बंधकर चली गई थी, वह कुछ दिनों के बाद अपने पूर्व प्रेमी का आह्वान सुनकर मुक्त हो साथ चल देती है, क्योंकि उसके अनुसार दोनों हम भिन्न वर्ण भिन्न जाति भिन्न रूप भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाओं से प्राणों से एक थे। परंतु यह विद्रोह मानसिक ही रहा। यही वजह है कि छायावादी कविता में नारी के पत्नी रूप का सर्वथा अभाव है। छायावादी कवि के लिए पत्नी सदैव भावी ही रही, वह वर्तमान न हो सकी। ग्रंथ के कवि पंत की प्रणय भावना भावी पत्नी की कल्पना में ही व्यक्त हो सकी। वस्तुतः छायावाद के सक्षम प्रेम का आलंबन प्रेयसी ही रही और आजीवन वह प्रेयसी ही बनी रही। पत्नी के रूप में उसे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त न हो सका। इसलिए छायावाद की अधिकांश कविताओं का नारी सौंदर्य अशरीरी और हवाई है तथा प्रेम भावना की कल्पनावासी तथा अतृप्ति परक है। पंत की रचनाओं में इस प्रवृत्ति की प्रधानता है। इसके विपरीत प्रसाद में प्रेम की तृप्ति का वर्णन कहीं कहीं मिल जाता है और निराला तो मुख्यतः स्वस्थ मानसलता और तृप्ति के ही कवि हैं। जूही की कली से लेकर गीतिका के गीतों तक सर्वत्र निराला ने प्रेम की परिणति तृप्ति में ही दिखाई है यदि जूही की कली। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। तो गीतिका में भी स्पर्श से लाज लगी। गीत के अंत तक जाते जाते मधुर स्नेह के मेघ प्रखरतर बरस गए। रस निर्झर झरझर उगा, अमर अंकुर उर भीतर संसृत भीति भगी। गीतिका के अनेक गीत कवि प्रिया मनोहरा के रंग से रंजित है और परिमल तो पुष्प पर खड़े गुंजार करने वाले मधुलुब्ध भ्रमर का प्रेरणा स्रोत ही है। कुल मिलाकर छायावाद में नारी के प्रेयसी रूप की ही प्रधानता दिखाई पड़ती है। माँ, बहन और कन्या के रूप दबे ही रह गए। निराला जैसे हर जगह अपवाद हैं, वैसे यहाँ भी। सरोज स्मृति कविता में उन्होंने अपनी कन्या सरोज का चित्रण करके आलोचकों को पहले से ही छायावाद के विषय में सामान्य आरोप करते समय आगाह कर दिया है। सरोज स्मृति में प्रेम के जिस वत्सल भाव की अभिव्यंजना हुई है, वह छायावाद में ही नहीं बल्कि संपूर्ण काव्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। यदि इस अपवाद को अपवाद ही मान लें तो भी छायावादी कविता में नारी को जो महत्व प्राप्त है, वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गौरवशाली है। नारी के सभी सामाजिक रूपों को न अपनाते हुए भी छायावादी कवि ने एक ही क्षेत्र में नारी को जो महिमा प्रदान की, वह स्तुत्य है। श्रद्धामयी, करुणामयी, कल्याणी, कलामयी तथा प्रेममयी जीवन सहचरी नारी का चित्रण करके छायावादी कवियों ने समाज और साहित्य को अभिनव जीवन रस से सींच दिया। कवि के शब्दों में अकेली सुंदरता कल्याणी, सकल ऐश्वर्यों की संधान, देवी माँ सहचरी प्राण।